countrywide.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर जीबी। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ हमारे तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक यूपीआई सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की विश्व की जब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहती है। आप उस पर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए, तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना चाहिए ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े और हर देश हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई है और सिक्योर हुई है और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई है तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है
क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1,00,000 रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस एप्लीकेशन का रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है। आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की है, सेमी कंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में सिर्फ, फना दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर जहां R&D डिजाइन यहीं होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM आर्म ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया जिसमें हमने आउटले 10 लाख करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा AI की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और AI के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें AI टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास AI की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और AI कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन 3 देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास सारी IT कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया AI के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। AI क्वांटम मिशन पे आइए, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपका वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, हम 2015 में 81वें थे, अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो UN यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।